చూడండి తండ్రి తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభిష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపకదామయం దదాతి స్వదాంతకం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద సద్వైత గదాధర శ్రీవాసతి గౌర భక్తులంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరి రామ హరి రామ 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 హరే హరే. ఆజ్ శ్రీ గదాధర పండిత్ ప్రభు కా ఆవిర్భావ దివస్ హై, బహుత్ హీ పవిత్ర దివస్, క్యోంకి గౌర గౌణోపదేశ దీపికా జిస్ గ్రంథ మే చైతన్య మహాప్రభు కి లీలా మే జితనే పార్షద్ ఆయే థే ఉన్ సబ్ కా ఒరిజినల్ జో పహచాన్ హై उसका वर्णन आता है. गौर गुणोपदेश दीपिका में गदाधर पंडित के विषय में कहा गया है कि वह विश्वभानु की कन्या श्रीमती राधारानी स्वयं थे जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रकट हुए थे गदाधर पंडित के रूप में. गदाधर पंडित का आविर्भाव और गदाधर पंडित का तिरोभाव दोनों ही अमावस्या के दिन आता है. ऐसा माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के अंग कांति, चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधारानी का जो भाव है, उनका जो रस है, प्रेम, वो चैतन्य महाप्रभु ने ले लिया. एक रूप से चैतन्य महाप्रभु ने सारा प्रेम गदाधर से चुरा लिया और यही एक कारण है कि जिसमें गदाधर पंडित ने उनके प्रकट और अप्रकट होने के लिए अमावस्या को चुना. गदाधर पंडित भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रिय भक्त थे, भक्त है. चैतन्य महाप्रभु का जो जन्मस्थान है मायापुर, आप सब भक्तों ने देखा होगा, जिसको योगापीठ कहते हैं, उसी योगापीठ के बिल्कुल पास में गदाधर आंगन, गदाधर का घर है. यहाँ पर गदाधर पंडित रहते थे और गदाधर पहले से ही भगवान की सेवा में उनकी रुचि थी, भगवान भक्ति में उनकी रुचि थी. कभी कभी निमाई पंडित, जो कि बहुत ही नटखट थे और विद्या विहार, विद्या विलास कर रहे थे, कभी कभी कहते थे गदाधर को कि एक दिन में तुम्हारे कृष्ण का ऐसा भक्त बन के दिखाऊंगा कि सारा संसार याद रखेगा. सो गदाधर दूर से देखते थे निमाई पंडित को आते हुए, तो रास्ता बदल देते थे. उनको लगता था कि ये आएगा, हालांकि वो मित्र थे, बहुत करीब के मित्र थे, कि बोले ये आएगा व्याकरण की उल्टी सीधी बातें करेगा और मैं उसके सामने हार जाऊंगा. तो गदाधर को महाप्रभु निमाई पंडित बहुत सताते भी थे, लेकिन सची माता हमेशा कहती थी गदाधर को, बेटा निमाई बहुत नटखट है, तुम उसका ध्यान रखा करो. तो जब महाप्रभु निमाई पंडित ने जब अपना प्रकट किया भाव, आध्यात्मिक भाव, तभी भी सची माता ने कहा था कि ये बहुत विह्वल रहता है प्रेम में, इसके कारण तुम हमेशा उसकी सहायता करते रहो. कभी कभी निमाय पंडित प्रेम में विवल होकर के कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है करते थे और बहुत ही उनका हालत बहुत ही दुखी हो गया. तो किसी ने गदाधर को बुलाया, गदाधर इनको संभाली, ये हमसे नहीं संभल गए. तो गदाधर को जब बुलाया तो गदाधर ने आकर के कहा कि वो तो आपके हृदय में ही है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो। तो जैसे ही गदाधर ने कहा आपके हृदय में, तो निमाई तुरंत अपने सीने को चीरने के तैयार हो गए। बोले कृष्ण हमारे हृदय में, तो मैं उसको सीना चीर देता हूँ, सीना फाड़ देता हूँ। तो गदाधर का नहीं 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 ऐसे नहीं आते हो, सीना फाड़ने से नहीं आएंगे। तो कैसे आएंगे? बोले आपको महामंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। फिर इस तरह से महाप्रभु को कंट्रोल में रखते थे हमेशा गदाधर। इससे कई घटनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई। एक बार श्रीधरी महाप्रभु शुक्लांबर के घर पे, शुक्लांबर ब्रह्मचर्य के घर पे कृष्ण कथा करने वाले, ऐसा पता पड़ा गदाधर पंडित को। तो महाप्रभु आए, निमाई पंडित आए, उसके पहले ही गदाधर जाके पहुंच गए अंदर की ओर, बैठ गए अंदर कमरे में, और आंगन में जो खुला एरिया था वहां पर निमाई पंडित ने कथा शुरू किया, और सब भक्त लोग कृष्ण कथा सुन रहे थे, और उनकी आंखों में से अश्रु धारा बह रही थी लोगों की। लेकिन गदाधर अंदर बैठे बैठे सुन रहे थे, और वो अपने भाव को वश में नहीं कर पाए थे, तो वो फुट फुट के रो रहे थे अंदर कृष्ण प्रेम में। तो निमाई बाहर से आवाज सुनी, निमाई ने कहा कि अंदर कौन है कि जो इतना क्रंदन कर रहा है? तो शुक्लांबर ने कहा अंदर तो आपका गदाधर बैठा हुआ है। और जैसे ही महाप्रभु सुने तो तुरंत गदाधर के पास आएगा, कहा गदाधर तुम बहुत फॉर्चुनेट हो, तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम है, मैं तो मेरे पापों का परिणाम भोग रहा हूं। निमाई ऐसे बताने लगे, मेरे हृदय में ऐसा प्रेम नहीं आता है। क्यों? महाप्रभु ऐसा बता रहे थे कि मैंने मेरा समय व्यतीत कर दिया व्यर्थ व्याकरण के विलास में, और मैंने भगवान के कथाओं के प्रति ध्यान नहीं दिया, और तुम्हारे हृदय में ये एक्स्टेटिक जो प्रेम है वो बड़ा उजागर है। तो ऐसा बोलकर महाप्रभु प्रणाम किए, आलिंगन दिए गदाधर को। ये एक और एक लेसन भी यहाँ प्राप्त होता है कि गदाधर पंडित के सामने स्वयं भगवान हमारे पंडित वो अपने विनम्रता प्रस्तुत कर रहे थे। तो विनम्रता ये वास्तव में अधिक भक्त की पहचान है। जब भक्त जब कभी ये कहता है कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं बड़ा अच्छा सीनियर भक्त हूँ, मैं वरिष्ठ भक्त हूँ, या मेरी भक्ति बहुत स्ट्रांग है, तो समझ लेना चाहिए कि वो वैष्णव सिद्धांत को ठीक से नहीं समझे। जो वैष्णव परंपरा के जो अनुयायी है वो हमेशा यही कहते हैं कि मुझमें भक्ति है ही नहीं, अर्थात मैं भगवान की सेवा करने में बिल्कुल विफल हूं। तो ये केवल दिखावे के लिए नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि ये केवल बातें करने वाली बातें हैं, दिस जस्ट लिप सर्विस, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में भक्तों का भाव होता है, ये हृदय का उनका स्थिति है। गदाधर पंडित के विषय में बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। गदाधर पंडित के विषय में संक्षिप्त में हम आपको बता देंगे, उसके बाद फिर हम हमारा जो रूटीन सब्जेक्ट है वो शुरू करेंगे उसके विषय में। गदाधर पंडित को दीक्षा के लिए भेजा गया था पुंडरिक विद्यानिधि के पास। पुंडरिक विद्यानिधि जो है उनके पास गदाधर गए, उन्होंने मन में सोचा कि ये मेरे इनसे एक बड़े प्रसिद्ध वैष्णव है, जब उनको बताया कि मैं तुम्हें एक प्रसिद्ध वैष्णव से मिलाता हूँ देखो, तो गदाधर ने सोचा कि कोई होगा, कोई सन्यासी कोई जप कर रहा होगा। लेकिन वहां पर जाकर देखा तो पुंडरिक विद्यानिधि तो पूरे आभूषण और गहने बहने पहने हुए थे, और महंगे वस्त्र और मुंह में पान और ऐसे तो देख करके गदाधर पंडित को दुख हुआ। गदाधर पंडित सोचने लगे कि मुकुंदा उनके साथ है, शायद मुकुंदा दत्ता मैं भी समझ रही बोली तो उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो लेकिन वैष्णव तो इस प्रकार का आचरण थोड़ी करते हैं वैष्णव, और ये तो कोई बहुत विषय कोई कोई राजा कोई बड़ा ऐश्वर्यवान कोई धनी व्यक्ति हो ऐसा विषय व्यक्ति का व्यवहार कर रहे तो। लेकिन वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा शुरू हुई और जैसे कथा शुरू हुई ये पुंडरीक विद्यानिधि के सारे अष्ट सात्विक वो कृष्ण भक्ति के जो विकार है वो सब प्रकट होने लगे, जमीन पे लोट पोट होने लगे, आंखों में अश्रु धारा बहने लगी। और ये देख करके गदाधर पंडित चौंक गए। तो गदाधर पंडित के मन में दुख हुआ कि एक ऐसे पवित्र शुद्ध भक्त को मैंने इस दृष्टि से देखा कि ये व्यक्ति कृष्ण भक्ति में इतना रुचि नहीं रखता, ये तो दिखता है बिल्कुल विषय की तरह। तो जब से गदाधर ने जाकर पुंडरीक विद्यानिधि के चरण में शरण लिया और उनसे क्षमा याचना की कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको ठीक से पहचान नहीं पाया और आपके विषय मैंने मानसिक रूप से अपराध किया। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। लेकिन गदाधर ने कहा नहीं, मैं आपके आपकी कृपा होगी तभी जब मैं मानूंगा कि आप मुझ पर मुझे अपना दास स्वीकार कर रहे हो, अर्थात आप मुझे शिष्य बनाइए। तो वृषभानु पुंडरीक विद्यानिधि जो पूर्व जन्म में वृषभानु थे और गदाधर पंडित श्रीमती राधारानी, और इस अवतार में पुंडरीक विद्यानिधि के शिष्य बनने के लिए गदाधर पंडित पहुंचे। तो कृष्ण गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा तो ले लिया लेकिन वो हमेशा निमाई के पास में ही रहते थे। और कई महत्वपूर्ण बातें हैं गदाधर पंडित की कि गदाधर को कई बार गदाई भी कहा जाता है, जैसे गौर निताई होता है वैसे गौर गदाई। कई मंदिर भी है नवद्वीप में गौर गदाधर के, जो कि चंपाहटी में है, शायद मामगाची में भी है। तो इस तरह से गौर गदाधर के कई मंदिर है। तो अद्वैत आचार्य ने स्वयं पूजा की थी गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की। ऐसे कई वर्णन है कि स्वयं भगवान इस तरह से लीला प्रस्तुत किए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए तब चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके जाने वाले थे तो बहुत कम लोग को पता था ये बात कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले। तब गदाधर पंडित ने महाप्रभु को कहा कि प्रभु आप संन्यास लोगे तो आपने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारा ये दास ये गदाधर तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेगा? आपने मेरा सब कुछ तो हर लिया, अब मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो पूरा आपका शरणागत हूँ और आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, अगर आप चले जाओगे मुझे छोड़ करके तो मैं कैसे जीवित रहूँगा? तो गदाधर पंडित इतने विनम्र भाव से महाप्रभु को विनती किया, महाप्रभु उसको मना नहीं कर पाया। महाप्रभु उनको परमिशन दे के ठीक है तुम आओ मेरे साथ जगन्नाथपुरी। तो फिर वो जगन्नाथपुरी गदाधर पंडित वहाँ रहने लगे। और जैसे महाप्रभु के साथ जो गदाधर पंडित गए जगन्नाथपुरी तब से उन्होंने जगन्नाथपुरी में क्षेत्र संन्यास ले लिया। क्षेत्र संन्यास का अर्थ होता है कि वो स्थान छोड़ करके कभी लाइफ टाइम कभी जाना नहीं, जब तक मरेंगे तब तक उसी स्थान में रहेंगे, क्षेत्र संन्यास कहते हैं। लेकिन जब कुछ समय के पश्चात महाप्रभु जाना चाहते थे वापस अलग अलग यात्रा के लिए, तो गदाधर ने कहा कि मैं आपके साथ आऊंगा, लेकिन महाप्रभु बोले कि नहीं नहीं तुम कैसे आ सकते, तुमने तो क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है। तो बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्षेत्र संन्यास को तोड़ने में, लेकिन महाप्रभु बोले नहीं लेकिन ये ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ मत आओ। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी से चलते गए, कई भक्तों के साथ साथ आए, अंत में एक दो भक्त रह गए थे जो कि कटक में थे, जिसमें गदाधर पंडित भी थे। तो कटक में महाप्रभु ने गदाधर पंडित को बहुत ही कड़क शब्द में, कठोर शब्द में ये बोल दिया कि गदाधर मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। क्यों? बोले तुम इंद्रिय भोग करते हो, इंद्र तृप्ति करते हो। गदाधर ने सोचा मैं इंद्र तृप्ति करता हूं कैसे? बोले तुम अपने संतोष के लिए मेरे साथ आना चाहते हो, और मैंने तुम्हें कई बार कहा कि तुम जाओ जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में रहो, लेकिन तुम अपना ही हित सोच रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तो इसको इंद्र भोग ना करे तो क्या करे। फिर महाप्रभु ने कह दिया कि मैं फिर से तुम्हें कहता हूं कि अब तुम यहां से वापस लौट जाओगे जगन्नाथपुरी, और तुम्हें मेरी शपथ है, अब एक शब्द भी तुम आगे इसके सामने कुछ बोले। तो गदाधर पंडित कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन शपथ है महाप्रभु की, तो वहीं पर बेहोश हो गए, फिर वापस खड़े हुए, फिर वापस बेहोश हो गए, फिर वापस खड़े हुए, फिर वापस बेहोश हो गए। इस तरह से बार बार बेहोश होने के बाद अंत में जगन्नाथपुरी वापस आए, क्योंकि उन्होंने कभी महाप्रभु से दूर होने का सपना भी नहीं देखा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भक्तों को ये सोचना चाहिए कि भगवान की और गुरु की इच्छा जो है वो सुपीरियर है, हमारी इच्छा से भगवान की इच्छा सुपीरियर है, गुरु की इच्छा सुपीरियर है। अगर हमारी इच्छा कुछ और है और गुरु की इच्छा कुछ और है, तो गुरु की इच्छा का पालन होना चाहिए, ना कि हमारी इच्छा का पालन। अगर हमारी इच्छा पालन करने के लिए कृष्ण भक्ति करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति में उसको स्थान नहीं प्राप्त होता। इसलिए कई बार कुछ ऐसे परीक्षाएं होती है भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा, जिसमें कुछ आपको ऐसे आदेश प्राप्त होते हैं जो आदेश का पालन आपकी इच्छा के विरुद्ध होते हैं, तो उस आदेश का पालन करना उसी में आपकी सफलता मानी जाती है। जैसे गदाधर पंडित के उदाहरण में आप देख रहे हो। तो शरणागत होना चाहिए गुरु के आदेशों के प्रति, भगवान के आदेशों के प्रति। गदाधर पंडित रहते थे टोटा गोपीनाथ में, टोटा गोपीनाथ करके बड़ा सुंदर स्थान है जगन्नाथपुरी में, आपने देखा होगा, बड़ा सुंदर स्थान है, चटक पर्वत है बाजू में, और चटक पर्वत जो है वहां पर चैतन्य महाप्रभु उसको, उस मिट्टी के पर्वत को, बालू का जो पर्वत है उसको गोवर्धन मान लेते थे और उसकी परिक्रमा करते थे। एक छोटा सा मिट्टी का ढेर है, बहुत बड़ा लेकिन हल्का सा, एक हिलोक जैसा, एक थोड़ा सा हल्की छोटी सी, छोटा सा रेस प्लेटफॉर्म है, दैट इज चटक पर्वत। बिग एक्चुअली, छोटा मीन्स ऐसे दिखने में, ऐसा कोई इतना भी छोटा नहीं है। तो बड़ा सुंदर स्थान है, और टोटा का अर्थ होता है बगीचा, बड़ा सुंदर बगीचा वहां पर है, और गोपीनाथ जी के विग्रह है वहां पर, गोपीनाथ जी की सेवा करते थे गदाधर पंडित। और माना जाता है कि वो विग्रह जो है वो बैठे अवस्था में है, वो बहुत लंबे विग्रह है। गदाधर पंडित जब बूढ़े हो गए तो उनकी कमर में वो कमर से बैंड हो गए थे, अब भगवान का श्रृंगार कैसे करें। तो एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब तो मेरी कमर से मैं सीधा नहीं हो सकता और आपकी आपकी हाइट जो है वो भी लंबी है, मैं आपके मुकुट वगैरह श्रृंगार नहीं कर पाऊंगा, मैं केवल आपके चरणों का श्रृंगार ही करूंगा, आपका धोती वगैरह श्रृंगार करूंगा, मुझे क्षमा कीजिए मैं अक्षम हूँ आपका पूरा श्रृंगार करने के लिए। तो एक जब ऐसा बोला तो दूसरे दिन भगवान गोपीनाथ जी बैठ गए और बैठी अवस्था में अब श्रृंगार करो। तो फिर गोपीनाथ जी वापस सब श्रृंगार करना शुरू किया, गदाधर वापस श्रृंगार करना शुरू किया। तो गदाधर का जो गोपीनाथ जी का जो चरण है, ऐसा लोग कहते हैं कि वहां पर महाप्रभु अपने लीला समाप्त करके उसी चरण में समा गए थे। तो स्थान बहुत सुंदर बहुत पवित्र है टूटे गोपीनाथ, और हृदय में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्राय उधर जाते थे और श्रीमद् भागवत की चर्चा करते थे। विशेष करके प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथाओं को महाप्रभु बहुत पसंद करते थे और दोनों के चरित्र को बार बार सुनते थे। और गदाधर पंडित इतना अच्छा रसोई बनाते थे कि उनकी उनके द्वारा पकाया हुआ खाना भोजन जो है उसको खाने के लिए महाप्रभु बहुत प्रतीक्षा करते थे। एक दिन उन्होंने महाप्रभु ने बुलाया था, गदाधर ने बुलाया था महाप्रभु को भोजन के लिए, तो निमाई नित्यानंद भी साथ में जुड़ गए और दोनों प्रभु को गदाधर ने राइस बनाकर खिलाया, राइस और सब्जी और भी कुछ व्यंजन। तो राइस और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ऐसा राइस हमें पूरे संसार में कहीं पर नहीं मिलेगा, और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि श्रीमती राधा ने कुकिंग में तो नंबर वन माने जाते हैं, क्योंकि संसार में क्या पूरे क्रिएशन में या आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत या कोई भी स्थान में राधा रानी से सुंदर राधा रानी से अच्छी रसोई और कोई बना ही नहीं सकता है। इसलिए और उनको वरदान भी है, जो उनके हाथ का बना खाएगा वो स्वस्थ रहेगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। इसलिए कृष्ण निरंतर राधा रानी को बुलाते थे भोजन के, यशोदा माता बुलाती थी वृंदावन में कृष्ण के लिए भोजन बनाने के। तो रोज प्रतिदिन का ये नियम था कि श्रीमती राधा रानी जाते थे नंदगांव और कृष्ण के लिए भोजन बनाते, ये रोज का रूटीन था उनका। सो गदाधर पंडित के साथ ऐसे कई लीलाएं है, सात लीलाएं तो आज हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कई महत्वपूर्ण लीलाएं गदाधर के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन गदाधर पंडित महाप्रभु के प्राण समान है, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर जो बड़ा सुंदर गोजरूम के विषय में गोजरूम कानन करके जो उनका लिखा हुआ है कविता, उसके एक हम गाते जो जिसमें गौर गदाधर का स्तुति है, स्मर गौर गदाधर केली कलाम भव गौर गदाधर पक्ष चरम, स्मर गौर गदाधर केली कलाम भव गौर गदाधर पक्ष चरम, शुणु गौर गदाधर चारु कथाम भज गो द्रुम कानन कुंज विदुम। स्मर गौर गदाधर केली कलाम, भक्तिवान ठाकुर कहते हैं कि हमेशा गौर गदाधर से जुड़े हुए जो केली कलाम और तत्वों के जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करो। स्मर गौर गदाधर केली कलाम भज भव गौर गदाधर पक्षचरम, गौर गदाधर के पक्षचर बनो, अर्थात उनके अनुयायी बनो गौर गदाधर के। सुनो गौर गदाधर चारु कथाम, और गौर गदाधर की जो दिव्य कथाएं हैं उस कथाओं को सुनो। भज गोद्रम कानन कुंज विदुम, और गोद्रम कानन कुंज विदुम अर्थात चैतन्य महाप्रभु जो कि गोद्रम द्वीप के सुंदर गोद्रम रूपी गोद्रम जो कानन है या वन है फॉरेस्ट उसका सुंदर चंद्रमा की तरह है। गोद्रम तो अब भक्तों को याद ही होगा गोद्रम गोद्रम द्वीप। सो गोद्रम जो कि हमारे टीओपी मंदिर के बिल्कुल सामने है। टीओपी मंदिर के बिल्कुल सामने है जो है वो जगह है गोद्रम द्वीप, यमुना को गंगा को क्रॉस करके। सो ये बड़ा सुंदर सॉन्ग है गोद्रम कानन कुंज विदुम अर्थात गोद्रम कानन का जो ये सॉन्ग है। वेल आज के मूल विषय पर हम चर्चा करते हैं। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि किस तरह से प्रभुपाद चाहते थे कि स्त्रियों का आदर रक्षा होना चाहिए और साथ साथ में उसके विषय में हमने सुना था कि कैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए। प्रभुपाद जी का लेटर है गर्ग मुनि को, उसमें से कुछ अंश आपके सामने संक्षिप्त में बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्री जो है वो भी जीवात्मा है और वो भी कृष्ण के पास आए हैं, इसलिए उनका तिरस्कार तो कभी नहीं हो सकता। अगर हमारे भक्त जो है वो सही सैद्धांतिक रूप से अपना आचरण करेंगे अर्थात ध्यान से अपनी साधन भक्ति सोला माला इत्यादि सब करेंगे तो कभी भी उनका मन जो है वो आकर्षित नहीं होगा। यदि भी माया का जो सबसे आकर्षक जो स्वरूप है वो स्त्री और धन है और संसार में हम रहते हैं और प्रचार कार्य में जब हम जुड़ते तो इन ये दोनों ही चीजों से दोनों से ही हमारा संबंध होता है या उनका उनके साथ हमें व्यवहार करना पड़ता है। और हमारा केवल उद्देश्य ये होना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमें स्ट्रांग रहना चाहिए। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि माया तो स्ट्रांग नहीं है लेकिन हम वीक हैं। उनके कुछ जगह पर उन्होंने बताया है तो चाहे वो धन हो या स्त्री हो कोई बुरा नहीं है लेकिन बुरा है हमारी भोग करने की इच्छा। तो अगर हम भोग करने की इच्छा पर काम करें तो स्वाभाविक रूप से हम इन आकर्षणों से अपने आप को बचा पाएंगे। सो वेल आज हम चर्चा करेंगे आपके भक्तों के साथ वैष्णव अपराध को लेकर के। ये अपने आप में इतना विशाल इतना विस्तृत सब्जेक्ट मैटर है लेकिन हम केवल समरी संक्षेप में इसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वैष्णव कितना महान होता है। और वैष्णव अपराध कितना भयानक होता है। श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में ये श्लोक आता है, आयुष्यम यशो धर्म लोकानाशीषैवच अन्तिश्वेयांसि सर्वाणि पुंसो महद् अतिक्रमः। इसमें लिखा है कि हे मेरे हे प्रिय राजा, जब कोई व्यक्ति महान आत्मा जो होते हैं, महद अतिक्रमण जब होता है, जब महान आत्मा जब होते हैं, कोई जो महान आत्मा हो, when a man persecutes the great souls, all उस व्यक्ति का, किसी का अपराध करता है, किसी को कष्ट देता है, महान आत्मा जो लोग है उनको कष्ट देने से, कोई भी व्यक्ति अगर कष्ट देता है, उनको दुखी करता है, तो उनके सारे जो वरदान है, उनका आयुष्य, उनका सौंदर्य, उनका ऐश्वर्य, उनका धर्म, उनके आशीर्वाद, उनके सद्गति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। आयु श्रियाम यशो धर्म लोकान आशीष एवच, सब आयु, लंबी आयु चली जाती है, श्रियाम धन चला जाता है, यश चला जाता है, धर्म चला जाता है, फिर लोकान आशीष, आशीष एवच, उनके सारे वरदान चले जाते हैं, अंति श्रेयांश सर्वाणि पुंसो, कैसे लोग का महद व्यतिक्रमा। सो भक्त जो होता है वो इन चीज में बड़ा सावधान रहता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वैष्णव की संगति प्राप्त होती है। प्रभुपाद एक लेटर में लिखे थे कि कृष्ण भावनामृत में हर एक मनुष्य इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के भक्त के सारे कार्य जो भगवान की सेवा में है, वो सारे सभी जीवात्माओं के लिए बहुत ही लाभदायी है, बहुत ही उपयोगी है। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, अनेक भाग्य फले वैष्णव आसिया मिले, अनेक भाग्य, बहुत बहुत भाग्य, अनेक अनेक पुण्य, अनेक अनेक तप व्रत, इन सब का पालन करने के पश्चात भी इतने जन्म जन्म के मेरिट सब इकट्ठे होते हैं, कब कभी किसी कारण से, किसी तरह से आपके जीवन में वैष्णव, इन सब का परिपक्व जब होता है, तब जाके वैष्णव प्राप्त होते हैं। अनेक भाग्य फले वैष्णव आसिया मिले, तब जाके वैष्णव हम प्राप्त कर सकते हैं। वैष्णव बहुत दुर्लभ है। कृष्णा शास्त्र में कहा गया है कि दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, ऐसे अनेक 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 मुक्तात्माओं में से केवल एक जो कृष्ण भक्त होता है, बड़ा दुर्लभ होता है। अनेक अनेक कर्मियों के बीच में वर्णाश्रम का पालन करने वाला श्रेष्ठ है, ऐसे हजारों वर्णाश्रम के पालन करने वाले में से एक ज्ञानी श्रेष्ठ है, करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक व्यक्ति मुक्ति के लिए प्रयास करता है, ऐसे करोड़ों मुक्ति वाले प्रयास करने वालों में से कोई एक जीवन मुक्त बन सकता है, और ऐसे करोड़ों करोड़ों जीवन मुक्त में से एक कृष्ण भक्त दुर्लभ मिलता है। तो आप सोचिए कि भक्त जो है कितना रेयर है, विशेष करके इस कलयुग में। कलयुग में हमारे कई भक्त है जिनको संगति का लाभ नहीं मिल रहा है, कोई ऐसे स्थान में है जहां पर ना कोई मंदिर है और ना ही कोई नाम हट्टा है, भक्ति वृक्ष या कोई भक्तों के परिवार है, तो उन लोग कभी आप उनको पूछोगे तो आप पता पड़ेगा कि वो कितने कितने असंतुष्ट, कितने दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको संग नहीं मिलता। और कभी मिल जाता है संग, तो उनके लिए फेस्टिवल बन जाता है। हमारे लिए तो क्या है, कई बार कुछ भक्त हम ऐसे स्थान में रहते हैं जहाँ पर अनेक भक्त है, अनेक मंदिर है, जहाँ पर आप नियमित रूप से सेवा दे सकते हो, नियमित रूप से भक्तों का संग ले सकते हो, लेकिन भक्तों का वैल्यू हमें नहीं है या फिर हम नहीं कर पाते। मुख्य बात यह है कि जो वास्तव में भगवान की शरणागत है, जो भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं, वो लोग मिलने बहुत दुर्लभ होते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, अभी आप सब भक्त लोग पिछले एक महीने से लॉकडाउन अवस्था में है, नो डाउट अभी आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, इससे आप कुछ यू नो कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कथा सुन रहे हो, लाइव प्रवचन वो सब होता है, आप एक दूसरे से बात करते हो भक्तों से, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि इस अवस्था में क्या आप इतने प्रसन्न हो जितने पहले प्रसन्न थे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का एसोसिएशन आपको इतना रुचिकर शायद नहीं लगे जितना रुचिकर आप फिजिकली सामने से किसी भक्त के पास जाकर के उनका एसोसिएशन लेते हो। तो ये स्वाभाविक है कि भक्त बहुत दुर्लभ है। हरिभक्ति विलास के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि डिवोटीज ऑफ हरि आर वेरी रेयर इन द एज ऑफ कली, द पोजिशन ऑफ द डिवोट इज मोर एलिवेटेड देन द पोजिशन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड रुद्र। शास्त्र हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि भगवान के भक्त का जो स्थान है वो ब्रह्मा और शिव से महान है, ऐसा कहा गया है। कोई कहे नहीं 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 ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये हरिभक्ति विलास का श्लोक है जिसमें से हम ये बता रहे हैं। और इसका एक उदाहरण खुद ही आप देख सकते हो कि शिव जी को भी कृष्ण के दर्शन लेने के लिए उनको ब्रजवासियों की शरण लेना पड़ा था, तब जाकर उनको कृष्ण का दर्शन हो पाए। और ब्रह्मा जी भी कृष्ण के वृंदावन में एक घास का तिनका बनने के लिए अपने आप को भिक्षा मांग रहे हैं। सो इन शॉर्ट, ब्रह्मा और शिव के स्थान से भी भगवान के जो भक्त है, साधारण भक्तों की बात नहीं कर रहे हम, और उन भक्तों की बात हो रही है कि जो भक्त ब्रजवासियों के भाव को रखता है। फिर 86 पैसा मेंशन किया गया है, द प्रेजेंस ऑफ अ डिवोटी एट द टाइम ऑफ डेथ एलिवेट्स इवन द किलर, द प्रेजेंस ऑफ अ डिवोटी एट द टाइम ऑफ डेथ एलिवेट्स इवन द किलर ऑफ अ रावण टू द स्पिरिचुअल स्काई। अगर कोई किसी व्यक्ति ने ब्रह्म हत्या की है तो ब्रह्म हत्या करने वाला पापी से पापी व्यक्ति भी अगर शरीर त्याग करता है किसी वैष्णव की उपस्थिति में, अगर किसी वैष्णव उसके पास में खड़ा है और उनकी उपस्थिति में शरीर छोड़ देता है, तो अभी भी उसको आध्यात्मिक जगत में स्थान प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गंगार परश होयले पाश्चात पावन। गंगार परश, गंगा में आपको स्नान करना पड़ता है 3 बार, गंगार परश होयले पाश्चात पावन, वो आपका पाप सब धुल जाएगा गंगा में स्नान करने से। तुम्हार दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण, केवल किंतु वैष्णव जो है वो तो केवल दर्शन करने मात्र से, वो तो उसमें तो स्नान करना पड़ता है, पूरा स्पर्श करना पड़ता है, इनका स्पर्श भी नहीं कर, दूर से दर्शन करने मात्र से पाप धुल जाते हैं, ये है वैष्णव का गुण। तो ऐसे वैष्णव की उपस्थिति में शरीर त्याग करना ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। If a dog eater becomes a Vaishnava, then he becomes more elevated than a Brahmin. And if a sannyasi is devoid of devotion to Vishnu, then he is considered to be more degraded than dog eater. अगर कोई भक्त है, चाहे वो नीच योनि से आया है, स्वपच गरिष्ठम, अगर कोई स्वपच अर्थात चांडाल कुल से आया है लेकिन वो वैष्णव है, तो वो ब्राह्मण से भी ज्यादा पूज्य है, उसको गुरु मानना चाहिए, वैष्णव स्वपच गुरु, वैष्णव उसको गुरु मानना चाहिए। और जो सन्यासी है लेकिन वो वैष्णव नहीं है तो उसको एक चंडाल जैसा ही मान सकते हैं। दिस इज मेंशन सन्यासी इज डिवॉइड ऑफ विष्णु भक्ति, विष्णु भक्ति से रहित कोई सन्यासी है तो वो तो चंडाल से भी नीच है ऐसा माना जाता है। सो अब समझे वैष्णव की जाति नहीं देखी जाती कि वो कौन सी जाति से आता है, वो अफ्रीकन भक्त है या ये आपका यू नो ब्राह्मण जाति का था, ये शूद्र से आया है, ये पटेल है, ये यू नो ब्राह्मण है, यू नो कौन सी जाति का, ये सब नहीं देखा जाता है क्योंकि वैष्णव की खुद की एक जाति है और वही उसका प्रमाण है और उसका गोत्र भी है। जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसका गोत्र अच्युत बन जाता है तो वही उसका वास्तविक समाज है। इवन एट द टाइम ऑफ टोटल एनिहिलेशन द डिवोटीज ऑफ विष्णु डू नॉट फॉल डाउन, दैट इज व्हाई श्री हरि इज नोन एवरीवेयर इज इनफॉलिबल ऑल परवेसिव एंड इनएक्सॉस्टिबल, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू फियर फॉर अ डिवोटी, अ डिवोटी नेवर इन्फ्लिक्ट्स पेन ऑन एनीवन। जब संसार का प्रलय हो जाता है तभी भी वैष्णव का पतन नहीं होता है, जब भगवान का प्रलय होता, जब भगवान प्रलय के समय पे जब प्रलय होता है तब भगवान सभी भक्तों को हमेशा अभय प्रदान करते हैं और इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युता, उनका कभी च्युत नहीं होते अपने कार्य से अपने वचन से। Those who worship the Supreme Personality of God as Sri Hari are the best of all people and no one is better than them in the three worlds. जो भगवान के शरणागत है, जो पूर्ण रूप से भगवान के भक्त है, वो लोग मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और तीनों लोक में उनसे अच्छा संसार में कोई नहीं है। यस्यास्ति भक्तेर भगवती अकिंचना, जब कोई भक्त भगवान का भक्त बनता है, जब भगवान की शरणागत होता है उसमें सब वैष्णव क्वालिटी प्रकट होते हैं, अकिंचन भगवान की भक्ति में स्थिर होता है या अकिंचन भक्ति में स्थिर होता है भगवान की, तब देवताओं के सारे गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं। हराव अभक्त से कुतो महत्वगुण, लेकिन जो हरि का भक्त नहीं है उसमें कौन सा महान गुण हो सकता है, वो केवल मनोरथ असत के मनोरथ पे गिरा पड़ा है। सो भक्त जो है बड़े उनमें सब प्रकार के गुण पाए जाते हैं और वो सभी गुणों में सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दो सिनलेस मैग्नानिमस वैष्णव प्योरिफाई द एंटायर क्रिएशन, देयरफॉर दे आर इवन बेटर देन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। ये वैष्णव जो होते हैं वो समग्र संसार को पावन करने वाले हैं, इसलिए उनको तीर्थ स्थानों को भी पवित्र करने वाले बता गया है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी। कहा जाता है कि जब कोई शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद, वो भगवान जब हरि नाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, जब वो कीर्तन करते करते दो हाथ आकाश में उठाते हैं तो ऊपर के सारे लोग पवित्र हो जाते हैं और जब वो उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं तो उनके प्रभाव से सारा स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। Those who are my dear devotees are not actually my devotees. Those who are my devotees are not actually my devotees. And those who are my devotees of my devotees are real devotees. भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्तों के भक्त है वो मेरे वास्तव में भक्त है। जो ये कहते हैं कि मैं भक्त हूँ कृष्ण का तो वो वास्तव में भक्त नहीं है। भगवान कहते हैं कि ठीक है वो भक्त है लेकिन मैं तो उन भक्तों से ज्यादा आकर्षित हो रहा हूं जो मेरे भक्त के भक्त है। गोपी भरतुर பத கமலையோர் தாச தாசானு தாஸ் தாஸ் தாசானு தாஸ் கா சொத்தா கி பகவான் கே தாஸ் கே தாஸ் கா தாஸ் அன்லிமிடெட் தாஸ் ஜப் லோக் தோ போல் சக்தா ஐசா ஹா பிரபு ஜி மே தோ அன்லிமிடெட் தாஸ் லேகின் போல்னே சே நீ ஹோதா ஹை இஸ் பிரகார் கா ஆச்சரண் கர்னா படதா ஹை தாஸ் தாஸ் கே ரூப் மே காரிய கர்னா தாஸ் கே ரூப் மே சேவா கர்னா தென் டெக்ஸ்ட் My devotees who are surrendered unto me and free from attachment and disgust, envy and pride, sing my glory all the time. They never cause any harm to anyone. They are always engaged in worshipping my devotees and eager to hear about me. They are the one who always carry me in their heart. Bhakta jo hote hai Bhagwan ke wo nirantar सब प्रकार के जो प्रभाव है भौतिक चीजों के उससे पर रहते, विशेष करके ईर्षा द्वेष इनसे मुक्त रहते हैं और वो इतने उदार चरित्र होते हैं कि सबको पसंद आते हैं। जैसे शिव गोस्वामी के विषय में कहा गया है, धीरा धीर जनप्रिय प्रिय करो, धीर और अधीर दोनों ही प्रकार के लोग भक्त को पसंद करते हैं, क्योंकि उनका आचरण जो होता है वो बहुत ही कृपालु, बहुत ही उदार, बहुत ही फ्रेंडली होता है, मित्रता से युक्त, और इसलिए वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। भक्त जो होता है वो एक चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है। जैसे आप देखते हो महाप्रभु की लीला में कि महाप्रभु का एक भक्त था जिनके शरीर में कीड़े पड़ गए थे, जिनको रसी रक्तपीत हो गया था और लेप्रसी हो गया था और उनके रसी शरीर से निकल गई थी, उसमें कीड़े पड़ गए थे, लेकिन वो कीड़े जो थे वो गिर जाते थे तो वापस उनको उठा करके रख देता था ताकि वो कीड़े जो है, बोले मैं तो ऐसे भी, मेरे शरीर तो ऐसे नष्ट हो गया है लेकिन कम से कम कीड़े तो उसका फायदा उठाए। वो बहुत ही विनम्र प्रकृति के और परदुखादुखी हमारे जो भक्त होते हैं वो परदुखादुखी होते हैं, इसलिए दूसरे का कष्ट देख नहीं सकते। तो जैसे आप वासुदेवा विप्रा, उनके विषय में आप देखते, वासुदेव दत्ता जिन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि आप कृपा करके संसार में जितने भी लोग हैं उन सब का पाप का बोझा मेरे सिर पर डाल दो, उन सब के लिए, बोले इतने सारे लोगों को नरक में रख के क्या करना है, इन सब की ओर से मैं ले लेता हूँ नरक में परमानेंट पीआर, परमानेंट रेसिडेंट, उधर ही रहता हूँ नरक में, सबका भोगता रहूंगा लाइफ, अनंत काल तक भोगता रहूंगा सबके पाप का बोझा, इन सबका उद्धार कर दो। तो महाप्रभु बहुत प्रभावित हुए, महाप्रभु ने उनको कहा कि अगर तुम्हारे उन सबका पाप का बोझा तुम पर डाल सकता हूँ तो उन सबका पाप का बोझा मैं नष्ट भी कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी इच्छा का अवश्य पूरी कर दूंगा। तो ये है भक्तों का स्वभाव, भक्त बहुत ही परदुखा दुखी होते हैं, इसलिए हमेशा भगवान के हृदय में निवास करते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण, आपके हृदय में हमेशा गोविंद विश्राम करता था, हमेशा गोविंद स्वयं भगवान जो कहीं कहीं रहते नहीं वो वैष्णव के हृदय में निरंतर निवास करते हैं। और इसके कारण वैष्णव का हर एक आचरण, हर एक उनका क्रियाकलाप कृष्ण की उपस्थिति के प्रभाव में होता है और उस वो हर एक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, और इसके कारण वो जहाँ कहीं भी जाता है वो सब जगह पवित्र हो जाती है। तो ये कुछ महिमा हमने वैष्णव की संक्षेप में आपसे चर्चा की, क्योंकि ये बड़ा आवश्यक होता है कि हम वैष्णव को पहले जाने, क्योंकि महानता क्या है, क्योंकि क्यों इस अपराध वैष्णवपाद को इतना बल क्यों दिया गया है कि उससे बचना चाहिए। अपराध शब्द का अर्थ होता है जिससे श्रीमती राधारानी दुखी हो, अर्थात कृष्ण दुखी हो, उसको अपराध कहते हैं। जिस कार्य से कृष्ण अप्रसन्न हो उसको अपराध कहते हैं, विशेष करके राधारानी। अपराध अपराध तो ये अपराध ऐसा महान समस्या है, विशेष करके वैष्णव अपराध। इसको पागल हाथी की तुलना दी गई है, हाथी माता पागल हाथी, वो सारे बगीचे को नष्ट कर देता है, उसको उठाकर पटक देता है। भक्ति लता जो होती है उसको कुचल देता है पागल हाथी। इसलिए वैष्णव अपराध से बड़ा सावधान रहना चाहिए। इसके विषय में एक लेटर है श्री प्रभुपाद जी का गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को लिखा हुआ लेटर है। इसमें वो लिख रहे हैं, यू आर ऑलवेज अलर्ट टू सी वेदर यू आर कमिटिंग सम ऑफेंस, दिस इज वेरी नाइस एटीट्यूड इन रेंडरिंग सर्विस टू द लॉर्ड कृष्णा एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव द स्पिरिचुअल मास्टर। वी शुड ऑलवेज मेंटेन दिस फियरफुल एटीट्यूड विच मीन्स केयरफुल अटेंशन, दिस एटीट्यूड विल एडवांस यू प्रोग्रेसिवली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ने लिखा है गोपाल कृष्ण महाराज को कि उस समय 1970 की बात है ये, तो कि मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूं कि तुम हमेशा सावधान रहते हो कि तुमसे कोई अपराध ना हो जाए, ये बड़ा अच्छा व्यवहार है। कृष्ण की सेवा और आध्यात्मिक गुरु जो कि कृष्ण के प्रतिनिधि है, उनकी सेवा करते समय हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि भय थोड़ा, हमें ये भय वाला भयभीत होकर रहना चाहिए। किस चीज का भय? कि सावधानी से व्यवहार, केयरफुल अटेंशन, क्या भय कि हमसे अपराध ना हो जाए। तो ये अच्छी बात है। प्रभुपाद ने कहा, दिस एटीट्यूड विल एडवांस यू प्रोग्रेसिवली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तुम्हारा ये जो मनोभाव है, ये व्यवहार है, वो तुम्हें कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए सहायता करेगा, वो तुम्हारी प्रगति कराएगा। सो इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए कि भगवान के भक्तों की अगर हम सेवा ना कर सके, उनका संग ना प्राप्त कर सके, लेकिन कम से कम उनका अपराध तो ना करे, उनको दुखी तो ना करे। और ये वास्तव में उचित इतना ही आवश्यक नहीं है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णव की संगति का लाभ उठाया जाए। और कोई कहेगा कि प्रभु जी उनके साथ संगति करने में यही समस्या आ जाती है कि हम इतने अच्छे नहीं हैं और इसलिए हम कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं, अपराध हो जाते हैं, और हम जाते तो भगवान वैष्णव को संग लेने के लिए, लेकिन परिणाम आता है सीधा अपराध के साथ, वापिस आते हैं घर अपराध हाथ में लेकर के। तो क्या किया जाए? सावधान रहना चाहिए कि ये वैष्णव जो है उनको साधारण मनुष्य नहीं मान करके उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। और वो जो संदेश देते हैं, वो आचरण के द्वारा जो सिखाते हैं, इससे हमें सीख प्राप्त करनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ना कि हम कई बार कहा जाता है कि गुरु और वैष्णव उनके साथ जो व्यवहार है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे अब दिए के साथ है, तो कोई लैंप है, ज्योति प्रकाश दिया, आप उसके बहुत ज्यादा करीब जाते हो तो जल जाने का चांसेस है, अगर आप उनसे बहुत दूर चले जाते हो तो अंधकार हो जाएगा। इसलिए उतनी दूरी पर रहना कि जितनी दूरी पर आप प्रकाश का, आप उनका प्रकाश भी ले सको और साथ साथ में आपसे कोई अपराध ना हो जाए। तो ये उचित व्यवहार के कारण अगर हम ऐसा उचित व्यवहार करेंगे तो इसका परिणाम यह आएगा कि हम वैष्णव के अपराध से बच पाएंगे। और वैष्णव अपराध बहुत ज्यादा हमारे जीवन में, क्योंकि हम इतने सावधान नहीं रहते, इसलिए हम लाइटली लेते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ हाँ प्रभु जी वैष्णव अपराध बोला है, लेकिन इसकी ये व्यक्ति का अपराध थोड़ा बोला था। वैष्णव अपराध तो प्रभुपाद का नहीं करना है, कोई सन्यासी गुरु ऐसे लोग का नहीं करेंगे। अभी ये आजकल का आया वो उसको क्या पता, इसको कुछ आता नहीं। और वो भक्त, अरे उसकी गाथा तो मुझसे सुनो, वो क्या करता है कैसा करता है सब पता है मुझे, सारी कुंडली है मेरे पास। तो इस प्रकार की जो विचारधारा, जिसको हम लाइटली लेते सब कुछ, एवरीथिंग वी टेक लाइटली, कि हाँ ठीक है मैं भी, इसका परिणाम है कि हम अहंकार से ग्रस्त है। हम सोचते हैं कि हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं और बाकी सब भक्त लोग कमजोर है। नहीं, ये सैद्धांतिक रूप से हमें लाभ नहीं करता है, उल्टा हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हमारा प्रयास रहे कि हम, चाहे वो कोई छोटा भक्त हो कोई बड़ा भक्त हो, कैसा भी भक्त हो, उनके विषय में अपराध से करने से बचे। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की शरणागत है, आज नहीं कल वो अपने आप को ठीक कर लेगा और अपराध हमारा लग जाएगा। तो क्यों अपराध, और ऐसा भी अपराध करके फायदा क्या है, क्या मिलने वाला है हमें? वैष्णव अपराध करके एक चीज मिलेगा क्या, भौतिक आकर्षण बढ़ेगा और भगवान के प्रति, भगवान के कथाओं के प्रति, भगवान के भक्तों के संग के प्रति हमारा आकर्षण जो होगा वो कम होता जाएगा। हमें लगेगा बाद में अपराध करने के पश्चात, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो केवल वही हमारी भौतिक जीवन की दुनिया में रहेंगे और मुझे भक्तों की संगति में नहीं जाना है, मुझे भगवान मंदिर दर्शन करने नहीं जाना है, मंदिर में तो सब मैं देखता हूँ सब कैसा है वैसा है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम वैष्णव अपराध से ग्रस्त है। अगर जिसके जिसने वैष्णव अपराध नहीं किया है या फिर वैष्णव से बचा लिया अपने आप को, वो भक्त कृष्ण कथा सुनने के लिए बहुत लालायित रहता है, भक्तों की संगति करने के लिए बहुत लालायित रहता है और वो भक्तों से जुदा नहीं रह सकता। सुबह इसके विषय में आगे हरि भक्ति विलास और उसके बाद फिर हरिनाम चिंतामणि में से कुछ चीज बताएंगे नेक्स्ट टाइम आपसे। सो वी आर वेरी थैंकफुल, आज बहुत सुंदर अवसर था गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस, और हम गदाधर पंडित के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि आज और एक फेस्टिवल हमने लॉकडाउन में बिताया और हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज हम पर वो कृपा करें कि हम चैतन्य महाप्रभु जो कि उनके हृदय में स्थित है, उनका जो कृपा का बूंद है, उनकी जो गौर प्रेम धन है, वो प्रेम धन का एक अंश हमें प्राप्त हो सके और विशेष करके उनका जो आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु का, उस आंदोलन को पूरे विश्व में प्रसारित करने में हमारी ओर से कुछ कंट्रीब्यूशन हम दे पाए, यही हमारा एकमात्र जीवन का उद्देश्य हो, इस प्रकार की हम प्रार्थना करते हैं गौर गदाधर के चरणों में। और आप सबसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
वेट अपूरा।